इसमें बहुत सारे राज होते हैं, इसमें बहुत सारे राज होते हैं। मैं हमेशा कोशिश ये कर रहा हूँ, मैंने कई बार खिदमत में अर्ज किया था कि मैं जब भी कोई काम करूँ आपको बता के करूँ, लिहाजा आप मुझे पर्ची कभी मत पकड़ाइएगा, क्योंकि आप जैसी पर्ची पकड़ाएंगे मुझे पर्ची पढ़नी पड़ जाएगी। और अगर आपने उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई जो आप पब्लिक को नहीं बताना चाहते तो मुझे पर्ची कभी मत दीजिएगा, क्योंकि आप जैसी पर्ची देंगे मैं वो पर्ची पढ़ लूंगा। मैंने अपने लिए तय किया है कि मैं कोई काम छुपा के नहीं करूंगा, जो भी करूंगा बता के करूंगा। तो जो हम लोग दुरूद पढ़वाते हैं इसमें बहुत सारे राज होते हैं। पहला तो बड़ी अजीब साहब बात, अखाद मुकर्रर सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है मुकर्रर, तो वो दुरूद भिजवा देता है, कहता है चलो ये लोग दुरूद भेजेंगे मैं दो चार सेकंड बोल कुछ सोच लूंगा। कभी ऐसा होता है कि उसको कुछ सांस लेना होता है तो वो सरक की हरकत कर देता है। कभी ऐसा होता है कि ऑडियंस में कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो उसके लिए दुरूद भिजवा देता है ताकि भाई ठीक है ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए। कभी ऐसा होता है वो लोग देखता है लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज से इधर उधर जा रहे हैं तो दुरूद भिजवाकर उनकी कंसंट्रेशन को वापस ले आता है। ये सब भी होते हैं, एक और मसला भी होता है। बाद अखबार हम सोचते हैं कोई बहुत अहम बात कहनी है और हम जानते हैं कि इसके कहने की ताकत हमें कम है, फिर हम कहते हैं दुरूद भेजो ताकि इनके नाम के सबके में तुम्हें भी ताकत मिल जाए हमें भी ताकत मिल जाए और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले चप्पे पर औलादे अमीर मोमिन का बच्चा मिल जाएगा। और खुदा ने चाहा तो हमने खुदा तौफीक दे कि हम अपनी इसी दुनियावी जिंदगी के अंदर वो मंजर देख कर अपने वक्त के इमाम की रोशनी के लिए उनकी जहूर में ताजी की दुआ के लिए और उनकी खिदमत उनकी नुसरत ने अपनी जान की अदायगी के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले غفور تو خدا کی صفت مغفرت کی طرف کہ وہ بخشنے والا ہے آپ کا اشارہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا عادل ہے تو خدا کی صفت عادل کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جتنی بھی یہ اسماء ہیں یہ خدا کی صفات ہیں۔ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میرا حضرت خلقت یہ ہے، میرا حضرت خلقت یہ ہے کہ میں اللہ کے ان ناموں کو زیادہ سے زیادہ اپنے کردار میں ریفلیکٹ کروا دوں، ان ناموں کو اپنے کردار کے اندر ریفلیکٹ کروا دوں۔ وہ کس طریقے سے؟ مثلا خدا صادق ہے میں سچا بن جاؤں، خدا عادل ہے میں عادل کروں، خدا رحیم ہے میں رحم کروں، خدا غفور ہے میں بھی بخشنے کی کوشش کروں۔ جو خدا کی صفتیں ہیں ان صفتوں کا ریفلیکشن میرے اندر ہونا شروع ہو جائے۔ اگر یہ کام سوچیں تو پھر ساری ٹرمنالوجیز کا جواب مل جاتا ہے۔ آیا آپ جانشین ہیں؟ ہاں جانشین۔ کس میں جانشین ہیں؟ خدا کی صفات میں جانشین، خدا کی صفات میں جانشین، یا وہ جگہ ہے جہاں تک خدا آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے میں آسمانوں میں صادق ہوں تم زمین پہ سچے بن کے دیکھو، میں آسمانوں میں عادل ہوں تم زمین پہ عدل کر کے دیکھو۔ اسی طرح ساری چیزیں بنتی رہیں گی، بس وہ رزاق ہے اور ہم سے کہتا ہے تم بندوں کو رزق دینا شروع کرو، یہ خدا چاہتا ہے۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ جو کل حضرت خلقت بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو اب میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تذکیہ کی ٹرم کو استعمال کرتے ہوئے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم نے ایک انتہائی کریٹیکل جگہ کے اوپر، ہر جگہ کریٹیکل ہے ویسے تو، لیکن ایک خاص جگہ ہے گیارہ قسموں کے بعد اگر آپ میرے سامنے آپ شریف النفس محترم معروف کے سچ بولنے والے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو اور آپ کہیں کہ ایسا ہوا ہے تو مجھے حق نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں ہوا. مجھے سب سے پہلے اسمپشن ہی دینا پڑے گا کہ ہوا ہوگا, کیونکہ یہ آدمی محترم ہے, یہ آدمی سچا ہے, یہ آدمی بات کہتا ہے, اس سے سٹیٹمنٹ سچ ہوگا. اچھا اگر اتنا محترم ایک شخص یہ کہے کہ قطعاً ایسا ہوا ہے تو پھر مجھے اس وزن اور بڑھانا پڑے, اور اگر وہ شخص کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے تو اس کی بات پھر کچھ اور ہوگی. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر کہنے والا خدا ہو اور گیارہ قسمیں کھائے, کہنے والا خدا ہے اپنی کتاب کے اندر صرف ایک جگہ, صرف ایک جگہ گیارہ قسم کھائے, دسویں قسم نفس کی ہے اور گیارہویں قسم خدا نے اپنی کھائی ہے. عجیب ہے, یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اگر قسم کا کام ہوتا ہے بات میں وزن بڑھانا تو گیارہ قسموں سے زیادہ اور کیا چاہیے. اب کتنا وزن بڑھانا ہے تو یہ واحد جگہ سورج شمس کے اندر ہے کہ خدا اندر نے سورج کی قسم کھائی, چاند کی قسم کھائی, زمین, آسمان, روشنائی, تحریکی, نفس, اور آخر نام خدا کہتا ہے خود میری قسم, ونفس وما سواها. گیارہ قسمیں کھانے کے بعد بیچ میں ایک جملہ آیا, فالہمہا فجورہا و تقواہا, اللہ نے الہام کر دیا ہے نفس کو, اس کا تقویٰ کیا ہے, اس کا فسق و فجور کیا ہے. گیارہ قسموں کے بعد یہ بیچ میں جملہ آیا ہے, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی وہ اسٹیٹمنٹ جس کے لیے خدا نے گیارہ قسمیں کھائی ہیں وہ یہ ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بس وہ کامیاب ہوگا, یعنی اگر میں اردو میں کروں تو میں کہتا ہوں سورج کی قسم, چاند کی قسم, زمین کی قسم, آسمان کی قسم, روشنائی کی قسم, تاریخ کی قسم, نفس کی قسم, نفس بنانے والے کی قسم, بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. اس کا مطلب خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے تم 500 تقریریں روزانہ کر لو تم کامیاب نہیں ہوگے, تم کچھ نہ کرو تزکیہ نفس کرو تم کامیاب ہو. جو کچھ کرنا ہے تزکیہ نفس کے ساتھ کرو پھر کامیاب ہو, اور اگر تزکیہ نفس نہیں کیا تو تم کچھ بھی کر لو کامیاب نہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جو نفس کا تزکیہ کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا, اور جو نفس کو دفن کر دے گا وہ ناکام ہوگا. قد خاب من دساہا. اب ہمارے پاس دو ٹرم چل رہے ہیں, تزکیہ اور دس, جو عربی نے کہا دساہا اور ادھر سے کہا من زکاہا. میں ان دونوں کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد علی محمد
صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرج.
تزکیہ ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ آپ آسٹریلیا میں ہیں, آسٹریلیا جو ہے وہ نیچرل بیوٹی سے بہت نزدیک میں لوگ سے جس نے اپنی طبیعی زندگی کو محفوظ کیا ہے, تو یہاں پہ پلانٹیشن وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہے, اور اس کی امیگریشن کے رولس بھی نظر آتا ہے کہ آپ لکڑی نہیں لا سکتے, آپ بیج نہیں لا سکتے, آپ یہ نہیں لا سکتے, وہ نہیں لا سکتے, ان کو خیال بھی ہے یہاں محفوظ کرنا. تزکیہ کسی کہتے ہیں؟ ایک پودا لگانے کو, بیج بوئیں, پودا بنے, درخت بنے, پھل دے, اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. یہ تزکیہ کیا مطلب؟ مثلاً آپ بیج بونے سے پہلے کچھ کرتے ہیں زمین کے ساتھ یا نہیں کرتے؟ کرنا پڑتا ہے, مٹی تیار کرنی پڑے گی آپ کو, اس کے اندر کھاد مٹی کا ایک گوشہ آپ کو بنانا پڑے گا, گڈھا اس کے مناسب ہونا چاہیے, بہت گہرا نہیں ہو, बिल्कुल ऊपर ऊपर भी ना हो और सही से मुनासिब होनी चाहिए। जब आप उसको डाल देते हैं फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही मार दें जैसे दफन करना करते हैं, ये नहीं कर सकते आप। बीच की पोजीशन होती है, उस पोजीशन में रखना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर मिट्टी जितनी डालनी है डाल दीजिए, नहीं हो सकता। जितनी भी कॉम्पैक्ट कर दें उसको कर दें, प्रेस कर दें बिल्कुल, नहीं हो सकता। बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अच्छा फिर आप इसको छोड़ने मामला खत्म हो गया, नहीं, आपको पानी भी देना है, इसकी गर्मी सर्दी का भी ख्याल करना है आपने। जब ये फूटना शुरू होगा तो मामला खत्म हो जाएगा, नहीं मामला खत्म नहीं होगा। कब मामला खत्म होगा? कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको मुसलसल इसका ख्याल करना है। अगर आपको फल चाहिए तो आपको ख्याल करना है। अगर ये जंगली पौधा है तो कोई मसला नहीं। अगर बशर से इंसान बनाना है तो तज़किया करना है। अगर बशर से शैतान बनाना है तो कुछ नहीं करना है, फिर तो ऐसे ही छोड़ देना है। ये जंगली खुद बहुत बन जाएगा। आपने इंसान बनाना है तो इंसान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तज़किया करना पड़ेगा। तज़किया में क्या करते हैं आप ये देखिए कि इसका इंटेक क्या है। आप ये देखते हैं इसके दुश्मन कौन कौन से, इसके लिए मुआफर कौन कौन सी चीजें हैं। आप इसको हर मिट्टी में नहीं डालते, हर पानी नहीं देते, हर हवा में नहीं रखते, ये सब चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने नफ्स के साथ। ऐसे करते हैं, अगर नहीं करते तो बीज बड़ा नहीं होता, ये नफ्स कैसे बनेगा? इस नफ्स से क्या करना है? अच्छी बात यह है कि अल्लाह ने इस नफ्स के लिए जो कुछ होना है वो एक मैनुअल और एक गाइड बुक में डाल दिया है कि ये कुछ होना है तो ये सही चलेगा। अगर आपने वो कर लिया आप कामयाब हो। खुद खुदा उस किताब के अंदर कहता है ग्यारह वर्षों के बाद, मैंने तुमको नफ्स अमानत दी है, ये वैसा नफा तो फी है मिन रूही, ये मेरी रूह में से, ये तो आपका अमानत है। अगर तुमने इस अमानत के साथ तज़किया कर लिया तो फिर तुम कामयाब हो गए। अगर तुमने तज़किया नहीं किया तो क्या किया? तुमने इसको दफन कर दिया। दफन कर दिया क्या मतलब? तुमने इसकी सारी स्किल्स एबिलिटीज को किल किया। ये जो तुमने किया है तुम नाकाम हो। तो इसका मतलब हमने क्या करना है? अपनी जिंदगी के अंदर थोड़े से बड़े होने से लेकर मरने तक तज़किया करना। इस तज़किया में क्या करना है? जो नफ्स के लिए अच्छा है उसे जमा करना है, जो नफ्स के लिए बुरा है उसे दूर करना है। अच्छा कौन सी चीजें नफ्स के लिए अच्छी है, कौन सी चीजें नफ्स के लिए बुरी है? जो अल्लाह के नामों में आ जाए वो अच्छा है, जो नामों के खिलाफ आ जाए वो बुरा है। जो उसके नामों में से है उसे ले लो और जो उसके नामों के अलावा है उसे छोड़ दो। वो सादिक है आप सच ले लो, वो खासिद नहीं है आप झूठ छोड़ दो। वो आदिल है आप अदल ले लो, वो जालिम नहीं है आप जुल्म छोड़ दो। दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। ये अब थोड़ा सा कुछ चराहा हुआ मेरे कि हदर पे लगत क्या हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था कि हदर पे लगत हुआ क्या लगा, मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ, कल मैंने आज से पता भी नहीं कितने दिन बाकी है। तो ये पता चले कि करना क्या है, कम से कम अब पता चलता है करना क्या है। करना ये है कि जो अल्लाह के अस्मा है जिसे कहते हैं उनको मैंने अपने अंदर लाना है और इसके अलावा जो कुछ है उससे दूर रहना है, बस ये काम करना। अच्छा अब ये तो 99 है, मैं 99 में कामयाब हो जाऊंगा, फिर दूसरा मसला ये भी, ये तो खुदा की है, मेरा क्या होगा? फिर मैं कितना सच बोलूं कि खुदा जैसा साबित कहलाऊं? नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं कर सकता, फिर पसंद नहीं। मैं कितना अदल करूं कि खुदा जैसा आदिल कहलाऊं? گرچہ وہ حکم دیتا ہے اعدل ہوا اخرج التقوی، لیکن کیا میرے بس میں ہے کہ میں عادل کر سکتا ہوں؟ جیسے میں یہ سوچتا ہوں خدا ہم سے کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور یقیناً یقیناً جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کی ہدایت کر دیں گے۔ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ تم صرف کوشش کرو، منزل تک میں پہنچا ہوں۔ خدا کا وعدہ ہے۔ پھر ایک اور میں نے سوچا خدا مجھے شارٹ کٹ بھی چاہیے، میں 99 پہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ایک چھوٹا راستہ دے دے تاکہ میں اس کے اوپر چلوں۔ خدا تعالیٰ نے پھر ایک راستہ دیا ہے، من جاء فلہو اشرو امثالیا، جو ایک نیکی لے کر آئے خدا 10 سے اس کی جزا دے گا، 10 سے اس کی جزا دے گا۔ اچھا اس کا میری بحث سے کیا تعلق ہوا؟ اس سے تعلق ایسے بنے گا، اب میں کو پہلا قدم آپ کی خدمت میں عرض کرنا جا رہا ہوں جو اس حضرت فرقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اٹھانا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد والا جماعت، پہلا قدم کیا ہوگا؟ بس فرض کیجیے آپ نے ساری باتیں مان لی، حضرت فرقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو اپنے اندر اٹیک کرنا ہے، خدا کی صفتیں ہمارے اندر آنی چاہیے، خدا کی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم یہ ہوگا کہ میں اللہ کے اسامی میں سے، اسمان اسنا میں سے ایک کو پڑھوں گا، ایک کو اس کے اوپر پوری محنت کروں گا کہ یہ عنوان میرے اندر آ جائے، ایک پہ محنت کروں گا۔ مثال کے طور پر کس پہ محنت کروں گا؟ خدا صادق ہے، سچ بولتا ہے، میں سچ سے شروع کر سکتا ہوں، یہاں سے شروع کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں خدا سے وعدہ کروں گا، خدایا میں تیرا ایک نام اپنے اندر لانے کی کوشش کروں گا، اور تجھ سے التجا کیا ہے؟ اس کوشش کو قبول کر کے تو 10 نام مجھے خود سے دے دے گا، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ایک نام اپنے اندر ایجاد کروں، اگر ہمیں ایک نام اپنے اندر ایجاد کر دیا خدا کے ناموں میں سے، اس کا مطلب ہے 10 کو خدا میرے اندر اسی حساب سے بنانا شروع کر دے گا۔ صحیح ہے؟ اچھا میں کہاں سے شروع کروں؟ میرے سامنے حضرت خلقت ہے، 99 نام، زندگی انلمیٹڈ نہیں ہے، اس کا ٹائم کنفرم نہیں ہے، اس نے کب ختم ہونا ہے اس کا کچھ نہیں پتا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کرشل ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی بنتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے عرض کیا میں ایک نام کا انتخاب کروں گا، اس اوپر محنت کروں گا، اس اوپر بہت محنت کروں گا، اتنی محنت کروں گا کہ وہ نام میرے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا جیسے یہ کام شروع ہوگا اتنے سے پورشن میں اللہ کا جانشین بن جاؤں گا۔ خدا نے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ بن جاؤں گا خدا نے کا جانشین، کتنے پورشن میں؟ جتنے پورشن میں میں نے اس کو ریفلیکٹ کر لیا۔ اب میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، آپ کہیں سے بھی شروع کریں، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے پاکستان میں یا ایسے کہیں ماحول میں، میں اس سے کہتا ہوں سچائی سے شروع کرو۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، جھوٹا آدمی دین نہیں سیکھ سکتا، جھوٹا آدمی دین سکھا بھی نہیں سکتا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے، نہ جھوٹا دین سکھائے گا نہ جھوٹا دین سیکھے گا، جھوٹا آدمی دین نہیں سیکھے گا۔ آپ کو یہاں پہ ایک بینیفٹ ہے، آپ دیندار ہوں یا نہ ہوں، یہاں سچائی رائج ہے، آپ کو ایک بینیفٹ مل گیا ہے۔ پاکستان میں کیا مشکل ہے؟ وہاں دیندار ہو یا نہ ہو جھوٹ رائج ہے، وہاں پہ ہے پرابلم یہ ہے، وہاں پہ چیزیں کلیپس کر گئی ہیں، کلیپس کرنے کے نتیجے میں ہیومن ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، اور سچ صرف اسلام کی ویلیو نہیں تھی، ये एक उमूमी तौर पर इंसान की वैल्यू है कि उसको सच्चा होना चाहिए। आपको ये एडेड बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि यहाँ के लोग पहले ही सच्चाई को पसंद कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं काफी हद तक। अलबत्ता ये मैं आज करता चाहूँ इनके सच में और इस्लाम के सच में गहराई का और सतह पर रहने का फर्क है। इनके सच में सिर्फ दुनिया दुनिया है और उससे आगे नहीं जाएंगे, और जो इस्लाम और खुदा से सच चाहता है वो उससे कहीं बढ़कर उससे कहीं बढ़ के जाना चाहिए। मसलन यहां पर अगर आप किसी से वादा करें और बेवफाई करें तो बहुत बुरा है, सही है? लेकिन अगर अपने खुदा से वादा करके बेवफाई करें यहां बुरा नहीं है, अल्लाह कहता है कि उससे भी ज्यादा बुरा है। मेटीरियल सोसाइटीज में और खुदा की दी हुई सोसाइटीज में जाहिर और बातिन का फर्क आपको सब को लेकर चलना पड़ेगा और उस फर्क के होते हुए आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बस मैंने जो कुछ आपकी खिदमत में अर्ज किया उसको मैं समराइज करता हूँ, आज के मेरे ख्याल में काफी हो गया, इसको समराइज करते हैं और उसके बाद एक पॉइंट बनाकर उस पॉइंट से बढ़ाना शुरू करते हैं। क्योंकि मैंने सच का पॉइंट कहा था उसमें दो तीन पॉइंट्स इजाफा करूंगा ताकि इतनी सिंप्लिसिटी पर ना आया जाए और उसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि ये सच मुश्किल क्यों है, वरना बहुत आसान लग रहा है लेकिन कहां मुश्किल है। मैं आज करता हूँ दुरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद लगे आपने ये बात भी कह रहे हैं। फर्ज कर लेते हैं आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक नई बीमारी के बारे में बताता है, उस बीमारी के बारे में आज तक आपको कुछ नहीं पता, आपने कभी उस पर तवज्जो नहीं दी। वो डॉक्टर बताता है आपको कि भाई ये एक नई बीमारी है, ये भी होती है और ये बड़ा मसला है, लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप कहीं सो जाते हैं फर्ज करें कि हाँ ये बीमारी है, सही? तो अब आप उससे अगला सवाल क्या करेंगे, आप उससे पूछेंगे कि जिनको ये बीमारी होती है उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा वो बताएगा इसमें ये 10 सिम्टम्स होते हैं, अगला काम आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा है, फंस सकता हूं शायद मुझे लग गई हो, क्या पता नया हेपेटाइटिस आया था तो क्या हुआ। वो कहते थे भाई आपके यहां पे दर्द हुआ तो आदमी खुद बहुत कहना था तो मेरे तो नहीं हो रहा, मैं दवा दवा के भी देखता था कि आप करेंगे मुश्किल है लोगों के साथ कि भाई जैसे हम पता चलता है देखना चाहते हैं हम कहां खड़े हैं। अब मैं आपकी इसी नसीहत से फायदा उठा के आपसे सवाल करना चाहता हूं जो मैंने आपकी खिदमत में इतनी बातें कही आपने कबूल की नहीं कि सही, अगर ये सही है तो अपने आपसे सवाल पूछिएगा इतनी जिंदगी गुजार कर मैं अल्लाह की किस सिफत में उसका नुमाइंदा हूं, अब कितनी सिफतों में नुमाइंदा बनू, और अगर नहीं बना और आज रात मर गया फिर क्या होगा, मैंने जिंदगी कहां गुजारी, सही गुजारी गलत गुजारी, ये मेजर क्वेश्चन नहीं, सवाल मैं भी आना चाहिए मुझे नहीं मालूम मैंने अपनी जिंदगी में कितना वक्त गुजार दिया है। मसलन अगर मैं 45 हूं या 25 हूं या 50 हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुमकिन है तीनों के पास एक महीना क्या बोल, बहुत बड़ा सवाल यह है अपने आपसे पूछिएगा अब तक अल्लाह की किस सिफत में उसका जानशीन बना। अगला सवाल अगर नहीं बनाओ अब क्या करना है, रास्ता यही रास्ता है। और मैं आपकी जन्म में फिर याद दिला दूं मैंने कल याद किया था मुझे 28 साल हो गए तालिबे बने हुए और मैं आपको मुतमईन होकर कह रहा हूं इससे हट के रास्ता नहीं है, रास्ता यही रास्ता है, इससे हट के कुछ नहीं। यानी अगर कोई कहना मेरे पास एक शॉर्टकट और भी है जिसमें ये आता ही नहीं है, नहीं आएगा ऐसा नहीं कुछ, रास्ता यही है। कोई कह नहीं मेरे पास एक है तो मैं उससे कहूंगा वो जो तुम कह रहे हो ना कि है उसकी भी पहली शर्त यह है कि इसमें क्वालिफाई कर लो, और अगर ये नहीं है तो उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
वाह वाह सुभान अल्लाह
फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाओ इससे सिवा कोई रास्ता नहीं रास्ता ये अच्छा अब करना क्या है सादा सा काम किसी एक सिफत से शुरू करो किसी एक सिफत से शुरू करो और उस एक सिफत के ऊपर मेहनत करें मिसाल के तौर पर मैंने नस किया सादगी से शुरू कर दी सच्चाई से अच्छा छोटी मोटी सच्चाई तो हो जाएगा बस आपसे मुझे भी कल का शेड्यूल क्या है आपके सामने एक रास्ता झूठ एक रास्ता सच आप सच को ये शेड्यूल तो कोई और पूछे कि भाई फला फला मामले में आपकी राय क्या है एक झूठ एक सच आप सच बोल ठीक है इसमें काम आसान है असल मुश्किल जो आखिर में जाके पेश आती है वो क्या है आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप कह रहे हैं ऐ खुदाया मैं तेरी बंदगी करता हूं तुझी से नुसरत मांगता ये सच है इसको सोचे मैं एक नतीजे पर पहुंचा था कि मेरा अपना जहन ये कह रहा था कि मुझे हर नमाज के बाद अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए कि खुदा है जो मैंने नमाज पढ़ी है इसमें भी शायद बहुत सारे झूठ बोल दिए बहुत सारे लोग अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे लेकिन कहते हैं या का नाम दो या का साइन है बहुत सारी मुश्किलें हम अरे इसमें सच्ची है मैं गवाही देता हूं तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है तो फिर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी क्यों करता हूं छोटा सा माबूद तेरी भी बनाया हुआ है ये भी एक मुश्किल है आहे सच सा ये जिस सच्चाई में फिर ये भी आएगा आगे जाकर आप छोटी छोटी जगहों से शुरू करें आप छोटी छोटी जगहों के सच से शुरू करें और उसमें चलना शुरू कर दीजिए आहिस्ता आहिस्ता अपने नफ्स पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए खुद ब खुद ये चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट भी होंगी आपके लिए रास्ते को भी खोल चल जाएंगी और बहुत सारी चीजों के अंदर खुदा की जानशीन को हासिल कर पाएंगे मिसाल के तौर पर फर्ज करने सच्चाई में आपने कोशिश की कि मैं खुदा का जानशीन बन जाऊं शायद इल्म ने खुदा आपको अपना जानशीन बना मसलन आपने कोशिश की खुदाया बख्शने में मैं तेरा जानशीन बनूंगा जो मेरे साथ गलती करेगा उसे बख्श दूंगा शायद खुदा अपनी कुदरत में आपको जानशीन बना खुदा को कुछ ताकत दे देगा वादे तो उसने किए ऐसा है अहदीस कुदसी में भरे पड़े उसकी बात है ऐसा नहीं होता ये असल मामला है अच्छा इन तमाम के पीछे एक ही वर्ड है एक कीवर्ड है जो बाजू मुझसे कोई पूछे पूरे दिन इस्लाम में एक वर्ड बताओ जो सबसे अहम हो जो अगर कोई हासिल कर ले तो सारा इस्लाम मिल सकता है और ये ना मिले तो कुछ नहीं मिलेगा तो मैं उससे कहता हूं कंट्रोल कंट्रोल इस्लाम में जो सबसे बड़ा कीवर्ड है कंट्रोल अगर किसी को कंट्रोल मिल गया अपने ऊपर कंट्रोल तो उसे पूरी दुनिया पे कंट्रोल मिल जाएगा और अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं मिला उसे कुछ नसीब नहीं मिलेगा और माहे रमजान में खुदा हमें जबरन कंट्रोल सिखाता है जबर करके कंट्रोल सिखाता है कहता है तुमको अपनी भूख और प्यास पे कंट्रोल करना है नहीं करोगे तो आप जहन्नम में डाल दोगे सही अच्छा इस कंट्रोल से फायदा क्या इस कंट्रोल से ज्यादा ये कि तुम भूख और प्यास पर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हें गुनाहों पर कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा तुम्हें आला मकामात को हासिल करने के लिए कंट्रोल आसान हो जाएगा कंट्रोल सिखा रहे हैं पहचान मतलब हम बहुत अच्छे टाइम है हम माह रमजान के अंदर कंट्रोल बढ़ाने का महीना जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ेंगे हमारे हमारा डेवलपमेंट का फेस आसानी से तय होगा और डेवलपमेंट जो करनी है मुझे अल्लाह की सिफात को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है अब यहां से हमारे पास ह्यूमन कैरेक्टर की कुछ खासियतें आती हैं जो अल्लाह के सिफात को रिफ्लेक्ट करती हैं और ह्यूमन कैरेक्टर की कुछ खासियतें ऐसी आती हैं जो अल्लाह की सिफात के अगेंस्ट जा रही हैं जो हमारी जिंदगी में काम बनता है वो ये है कि जो इंसान के किरदार में अल्लाह की सिफात से कोऑर्डिनेट करने वाले कैरेक्टर्स हैं उनको अपने अंदर लेकर आए और जो नहीं है उनको बाहर निकाल दिया। हमारे दोस्त ने इस काम को इस तरह से बताया, मैं उनका ये मशवरा उनकी लड़ाई बात को बहुत बताता हूँ। शायद वो नाम नहीं दिलवाना चाहते, भारत में दुबई में था एक दफा, तो एक दोस्त मेरे पास आए कहेंगे मौलाना साहब आप कुरान करीम कैसे पढ़ते हैं। मैं खास तरीके से पढ़ता हूँ, इस पर आप बताइए सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। कहेंगे मैं ऐसे कुरान पढ़ता हूँ कि मैं हर रोज जब अपने काम की जगह पहुँचता हूँ मैं आधे घंटे पहले पहुँचता हूँ, आधे घंटे पहले पहुँच जाता हूँ, कुरान करीम मैं लेता हूँ और एक पेपर ले लिया है, मैंने एक पेपर लिया उस पर कॉलम बना हुआ दो कॉलम बीच में लाइन लगा दी, एक पे लिखा है राइट हैंड पर ये करना है, लेफ्ट हैंड पे लिखा है ये नहीं करना है, डू इट डोंट डू इट। उसके बाद कहेंगे मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ता हूँ, कुरान का मसला लिखा है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, तो मैं डू इट की लिस्ट में लिख देता हूं एहसान करना, ये करना है। एक जगह आता है खुदा मुताल मुत्तकीन को जजा देता है, तो मैं उससे निकालता हूं तखवा, ये करना है। एक जगह खुदा मुताल मुताल कहता है जालिमीन का हशर बुरा होगा, तो मैं कहता हूं जुल्म ये नहीं करना है। क्योंकि मैंने सारे कुरान से डू इट और डोंट डू इट की लिस्ट निकाल दी है। उसके बाद कहेंगे मैंने अपनी जिंदगी में टास्क बना लिया है, एक महीने इस डू इट पर अमल करूंगा, फिर इस पर, फिर इस पर, इतना करूंगा कि जितने कुरान में थे कि करो वो मैं कर चुका हूं, कर लू, और जो कुरान में लिखा है नहीं करो उससे मैं बच गया। क्योंकि फायदा ये होगा कि मेरा कैरेक्टर कुरान की रिफ्लेक्शन बन जाएगा, और खुद कुरान करीम क्या है, कुरान करीम उस इंसान, प्लीज इस पर और ज्यादा गौर कीजिएगा, कुरान करीम क्या है, कुरान करीम उस इंसान और उस सोसाइटी का नक्शा है जो खुदा बनाना चाहता है। कुरान करीम क्या है, उस इंसान और उस सोसाइटी का नक्शा है जो खुदा बनाना चाहता है। इसका मतलब यह कि अगर मैं कुरान के मुताबिक अपना कैरेक्टर बन गया तो मैं कौन सा इंसान बन गया, जो खुदा बनाना चाहता है, जो खुदा बनाना चाहता है, फिर वो सब कुछ आएगा जो खुदा देना चाहता है। और ये वो मार्का है जिस पर और आप बैठे हुए हम लोग इसके अंदर है, उसको ये ना समझे हमारा हमारी असली ड्यूटी मिसाल के तौर पर सिडनी में रहते हुए ये है कि हम वीकेंड पर एक दफा जमा होंगे और मामला खत्म, हमारा सारा दीन जोश और जज्बा यहां से ठंडा पड़ गया। आप यहां पर काम करने नहीं आते, यहां से इंस्पिरेशन लेने आते हैं, बाहर जाके काम करना है। हम लोग क्या समझते हैं कि ये वो काम है जिसको करना है हमें, नहीं ये काम नहीं है, ये यहां पर हमारे इंस्पिरेशन लेने के लिए, मालूमात देने के लिए, काम कहां करना है, काम बाहर करना है। मसलन खुदा कहता है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, कब कहां कायम करो, मस्जिद के अंदर 15 मिनट के लिए। मैं कहता हूं नहीं, ये नमाज कायम करने की याद दहानी है, कायम बाहर जाके होगी, बाहर जाकर नमाज कायम करो। नमाज क्या है, अल्लाह की बंदगी करो। अब इसको इंशाल्लाह बात के लिए रख लेते हैं, तो आपको मैंने नोट कर लिया। अच्छी बात यह कि यहाँ वक्त की टाइम बहुत ज्यादा लग नहीं रही है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है कि अगर बहुत ज्यादा वक्त ले लिया तो आदत खर्च जाएगी, तो हम खुद हमें ख्याल करना पड़ेगा कि भाई वक्त की टाइम क्या होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह इस बात को कंट्रोल कर लें, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर खत्म करना है, टाइम की जो भी लिमिट्स हैं आपके लिए भी क्लियर हो, हमारे लिए भी क्लियर हो, और इंशाल्लाह हम इस काम को अंजाम दे सकें। परवरदिगार से दुआ करते हैं। मैं काम मामूलन नहीं करवाता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पाकिस्तान से सोच के आया था कि मैंने यहाँ पे करवा लूंगा, और शायद अपने लिए सोच के आया कि शायद यहाँ से वो टर्निंग पॉइंट मिल जाए कि मुझे जिंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं करवाया करूँ, मैं नहीं करवाता था, लेकिन मैं सोच के आया कि मैं यहाँ पर जबर करके करवा लूंगा। वो काम ये है, अपने ऊपर जबर करके काम ये है, दुआ से पहले 10 दफा या अल्लाह कहने से दुआ पूरी होती है। हमारे पास रिवायत मौजूद है, रिवायत मौजूद है कि अगर दुआ से पहले 10 दफा या अल्लाह कहें तो दुआ पूरी होती है। ठीक है, अच्छा करने का काम क्या है, الحمد للہ آپ نے مزرک آپ کی روح پاکی سر الحمد للہ آپ نے ذکر اہل بیت کی ہے قرآن کریم کا ذکر ہوا ہے آپ کی روح پاکیزہ ہے اس پاکیزہ روح کے ساتھ آپ اور میں مل کر 10 دفعہ یا اللہ کہیں گے اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہم خدا کے اوپر کر سکیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کام کو ہر روز انجام دیں گے ہر روز دعا سے پہلے یا اللہ کہیں گے بعض وقت میں بھول جاؤں گا اگر میں مجھے معلوم ہے لیکن جتنا مجھے یاد آتا رہے گا میں وہ کرواتا رہوں گا اور اس یا اللہ کہنے میں پوری اپنی توجہ خدا کی طرف رکھیے گا پوری توجہ خدا کر رکھیے گا نہیں معلوم کون سا یا اللہ خدا کو پسند آ جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کے ہمارے دل کو نورانیت نصیب ہو جائے شروع کرتے بسم العظیم العظم بسم العظیم العظم العجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما اے پاک پروردگار تجھ واسطہ قرآن اہل بیت کا پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں کہ پر خلوص تیرے دین کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار پرچم ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما پرچم کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما اے پاک پروردگار ہماری دعائیں تیرے دین کے نام پر تیرے حجت کے نام پر اے پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما جو مشکلات میں ہیں اے پاک پروردگار بحق حجت خدا ان کی مشکلات کو برطرف فرما جو بے گناہی کے عالم جیلوں کے اندر ہیں پاک پروردگار خاص کر ایک فرد مورد نظر ہے پاک پروردگار بحق و سرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہے بحق محمد و آل محمد ماہ رمضان میں ان کے ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے سالوں میں قرار فرما ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا